सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे परिच्छेद पर बात करूंगा। परिच्छेद हम हल करेंगे, पूरा समय उसे दे सकें इसलिए मैं इशारे के तौर पर आपसे केवल तीन समाचारों की चर्चा कर रहा हूं। इनके बारे में संभव हुआ तो हम लोग कल बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और खासकर अफगानिस्तान में घटित घटना के बाद उस पर आप सब गौर करेंगे। दूसरा, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हेरोइन पकड़ी गई है लगभग, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए है, 21,000 करोड़ रुपए। और ये जो हेरोइन है ये अफगानिस्तान से होकर के आ रही थी। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने इस बारे में कुछ पहले बात की थी, जब अफगानिस्तान पर तालिबानी धीरे धीरे अधिकार करते जा रहे थे उस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ यह मामला है और ये आपके सिलेबस में है। इस पर हो सका तो हम लोग बाद में बात करेंगे। तीसरा जो समाचार है फ्रेंड्स, वो है कि जो अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है, amazon.com, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, उसने अभी लीगल फीस के रूप में, लीगल फीस यानी कि कोर्ट कचहरी के मामलों को जो वकील देखते करते हैं, उनके फीस देने की जो राशि बताई है वो बताई है 8,546 करोड़ रुपए, 8,546 करोड़ रुपए उसने एक साल केवल लीगल फीस दी है। ऐसी कौन सी वकालत होती है भैया, कितने केसेज उस पर चल रहे हैं, तो यह भी एक विवाद का कारण बना है, है ना। तो ये तीन समाचार हैं, इन पर हम लोग आगे बात करेंगे। आपके ध्यान में रहे बस इसलिए मैंने इसकी चर्चा यहां की है। अब मैं सीधे सीधे परिच्छेद पर आता हूं। पहली बात तो यह है कि सच पूछिए तो जब मैं परिच्छेद जैसे विषय को ले रहा था तो मुझे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसे इतना उत्साहजनक रिस्पांस मिलेगा। बहुत ही उत्साहजनक रिस्पांस आप सब ने दिया है। आप सबकी भाषा, तौर तरीके पढ़ने के बाद मैं बहुत अच्छे तरीके से अनुमान लगा सकता हूं कि वाकई में आप लोगों ने इसका भरपूर उपयोग करके लाभ उठाया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, डेफिनेटली आप सबको सफलताएं मिलेंगी। चाहे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मिली, आप सब जो डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं मिली, और बहुत बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं मिली, यह मेरे लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है। क्योंकि जब आप सब प्रतिक्रियाएं देते हैं ना तो थोड़ा सा जोश आता है, अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी बिल्कुल डल नहीं रहना चाहिए कि ठीक है यार भेज देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपको एक्टिव होना चाहिए, अपनी तरफ से बात रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम अगले परिच्छेद की पर बात करते हैं। और इस परिच्छेद का जो संबंध शब्द से, वह पूर्व धारणाएं से है, एजम्पशन को लेकर है, पूर्व धारणाएं, राइट। अब मैं पढ़ रहा हूं, उसे ध्यान से सुने। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये मैं आपको बता दूं, डी सेट मेरे पास है, और जो मैं पढ़ने जा रहा हूं है क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से सुनिएगा, और पहले ही मैंने बता दिया है जानबूझकर कि इसमें क्या पूर्व धारणा बनाई गई है। और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप परिच्छेद हल कर रहे हो तो पहले प्रश्न में जाकर के देख लीजिए कि इसमें आपको क्या पकड़ना है। पूर्व धारणा पकड़ना है, निहितार्थ पकड़ना है, मैसेज पकड़ना है, कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है, उससे जो है आपका रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। और सच बात पूछिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी भी उसे हल कर सकेंगे। तो परिच्छेद सुनिए। जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा से प्राप्त होने वाला लाभ भी बढ़ जाता है। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ी हुई आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात होती है। दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर और ऊंची दरों पर कर लगाने का निर्णय लेती है तब स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। यही प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर भी लागू होता है जिन्हें यह निर्णय लेना है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं। फ्रेंड्स, ये छोटा सा परिच्छेद है और इससे केवल एक ही प्रश्न पूछा गया है। और अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तीन पूर्व धारणाएं दी हैं, तो इसमें से कौन कौन सी बनाई गई हैं? मैं पूर्व धारणाएं पहले पढ़ता हूं। नंबर वन, किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणित हो जाती है। दूसरा है, बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। और जो तीसरा विकल्प है वो है, आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसके बाद जो विकल्प दिए हैं ABCD, केवल एक, केवल दो, केवल तीन और फिर एक, दो और तीन, ये विकल्प दिए गए हैं। मैंने जानबूझकर के बहुत सरल अंश चुना है। शुरुआत जब हम सरल से करते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय होता है और फिर धीरे धीरे हम कठिनता की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत सरल है और मुझे लगता है कि सुनने के बाद पूरे परिच्छेद को आपने उत्तर सोच भी लिया होगा, उत्तर सोच लिया होगा। देखिए, पहली बात, अगर हम डी पर जाते हैं, एक दो तीन, तो अब आप देखिए कि जो तीसरा विकल्प है, जो तीसरा स्टेटमेंट है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है, सामान्यतया यह धारणा गलत नहीं है, सामान्यतया सही है। लेकिन यहां चूंकि शिक्षा की बात की जा रही है तो इस धारणा को लेकर के ये बात नहीं है, क्योंकि यहां जो तथ्य है, देखिए, जो सेंटर में है, वो सेंटर में है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में? एजुकेशन के सेक्टर में निवेश कई क्षेत्रों में होता है, हर क्षेत्र में निवेश होता है, उद्योग में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में हो रहा है निवेश। यहां निवेश की बात हो रही है और दूसरा एजुकेशन सेक्टर में निवेश की बात हो रही है, क्योंकि जब हम परिच्छेद को पढ़ रहे हैं और जब पूरा हो जाता है तो हमारे दिमाग में कुछ सार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि यह है किसके ऊपर। और यहां आपको इस बात के प्रति भी सतर्क रहना होगा, बहुत ज्यादा सजग रहना होगा कि जिस पूर्व धारणा की बात यहां हो रही है, जिस पूर्व धारणा को आपको पकड़ना है, वह पूर्व धारणा आपकी अपनी पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी जो पूर्व धारणा होनी चाहिए यहां, वह जो परिच्छेद है उसमें से निकल कर आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी धारणा को रिप्लेस करना पड़ेगा और परिच्छेद की धारणा को उसकी जगह पर लाना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है जिसे आपको गुजरना होगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि चीजें आपके दिमाग में रचती बसती चली जाएंगी, राइट? तो अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन सी बात कही गई। तीसरे को मैंने कहा कि चूंकि आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर लिया हुआ है, वैसे आपको उलझाने के लिए दिया है कि जो अगर हम किसी को एजुकेट करते हैं तो मानव पूंजी का ही निर्माण कर रहे हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। तो सीधी सी बात है कि डी तो गायब ही हो जाएगा, एक दो और तीन तो नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। इसके बाद है एक या दो या तीन, राइट? तो अब हम दूसरे पर आते हैं। देखिए, अक्सर यह होता है कि जो विकल्प दिए जाते हैं, मैंने इससे पहले वाले में भी आपसे चर्चा की थी कि वो बहुत ही कम डिफरेंस के होते हैं, उनके शेड्स में बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है, लगता है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। इसीलिए होता है कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, मोस्ट एप्रोप्रिएट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूसरा इसमें जो विकल्प है, स्टेटमेंट है, कहना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब डेफिनेटली अगर बच्चों को आप पढ़ा लिखा दीजिएगा तो वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो वो आर्थिक स्वावलंबी तो हो ही जाएंगे। तो कॉमन सेंस के हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अगर बच्चों की शिक्षा में निवेश किया जाए तो बच्चे स्वावलंबी बन जाते हैं, आर्थिक रूप से परावलंबी नहीं रह जाते। लेकिन क्या इस तरह की धारणाओं को लेकर के इसमें चला गया है? नहीं, बच्चों के बारे में नहीं कहा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के बारे में कहा गया है। आपको कहां फंसाने की कोशिश की गई है? अगर आप इस अंश के बिल्कुल आखिरी में आएंगे तो वो कहा जा रहा है कि यदि टैक्सेस घटा दिए जाएं, मतलब शिक्षा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कॉलेज खोल रखा है या प्राइमरी स्कूल या जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल रखा है, तो उसमें अगर टैक्सेस घटा दिए जाएं तो मैं और ज्यादा संस्थान खोलने के लिए प्रेरित होऊंगा। अगर इसी तरह की छूट अभिभावकों को भी दे दी जाए कि आपको शिक्षा पर जो आप निवेश करेंगे उसमें इनकम टैक्स की इतनी छूट मिलेगी, तो अभिभावक भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। ये बात कही गई है, क्योंकि आखिरी लाइन में बच्चों की बात है, बच्चों की शिक्षा पर बात है। तो आपको दूसरा विकल्प दे दिया, दूसरा विकल्प नहीं, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि देखिए आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब हम पहले पर आते हैं, किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से, मतलब इसके बारे में कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणित हो जाती है। आप ये कह लीजिए कि यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इस पर सबसे ज्यादा सही बैठ रहा है। और यह शिक्षा पर ही नहीं, किसी भी क्षेत्र पर होता है। वहां आप टैक्स की छूट दे दीजिए तो लोग उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि जो हमारे पिछड़े हुए एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, कि वहां अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आपको बिजली इतनी सस्ती मिलेगी, इनकम टैक्स में ये छूट दी जाएगी, सरकार देती है ना, ताकि आप वहां जाएं और उद्योग लगाएं। लेकिन यहां जो शिक्षा की बात है, तो देखिए यहां उच्च शिक्षा शब्द इस्तेमाल किया गया है, शिक्षा को फोकस्ड कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं, तो एक दो तीन को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास एक दो और तीन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो बेहतर हो सकता है उसकी हमें खोज करनी थी, और उसकी खोज हमने कर दी। आप लोग भी इसको अपने ढंग से हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप वेरी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कि नहीं नहीं ये होगा। तो दोस्तों समय को देखते हुए मैं केवल एक ही परिच्छेद पर आपसे बात कर सका हूं, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले मेरी कोशिश होगी कि एक दो परिच्छेद पर कम से कम हम लोग और चर्चा करें। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, के बी मीना, अमोल साहनी, दीपक श्योरन चरखी दादरी हरियाणा से, चंदन उपाध्याय कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और सौरभ कुमार दरभंगा बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।